ओम शांति। कल शाम से हमने ये परिवर्तन की यात्रा विशेष रूप से चालू की थी और अपने मन में लक्ष्य लिया था कि मुझे कोई एक संस्कार मेरा में मुझे खास परिवर्तन करना है। वो लक्ष्य याद रहा, अपना अपना लक्ष्य याद रहा कि हाँ मुझे ये परिवर्तन करना है इस 24 घंटे में, याद रहा? याद रहा। उसमें आपको लगा कि थोड़ा रिजल्ट मिला है? वैसे तो एक्चुअल रिजल्ट तो तब पता लगेगा जब सामने कोई परिस्थिति आएगी। अभी तो यहीं बैठे हुए हैं तो इतना नहीं पता लगता है, लेकिन उस लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता पूर्वक रख के चलेंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी ही। अभी आप विशेष क्या सुनना चाहते हैं खास? मुझे जो पहले बताया हुआ था ये था कि माना योग की जो पांच अवस्थाएं हैं उसके बारे में थोड़ा बतावे, वो सुनना चाहते हैं या और कुछ? बताइए, कोई विशेष पॉइंट है तो वो बताइए आप। बहने? हाँ जी, योग, योग की पांच अवस्थाओं के बारे में वो बता देते हैं आपको। योग की पांच अवस्थाओं के बारे में, वैसे तो हम बाबा के बच्चे जब से बाबा के बने हैं तो योग लगाना सीखे हैं और योग ही लगाते हैं, क्योंकि यही बाबा ने सिखाया और यही हमारा मुख्य सब्जेक्ट भी है योग। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उसको हम थोड़ा विधि पूर्वक अगर करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी करने को हम कहते हैं कि हम योग कर रहे हैं, लेकिन हम कौन सी अवस्था में टिके हुए हैं वो कभी कभी हमें पता नहीं भी होता है। तो योग की मुख्य रूप से पांच अवस्थाएं मानी जाती है, कोई चार भी कहते हैं, हमने उसको पांच लिया है। पांच अवस्थाएं योग की है। एक है सबसे पहला जो है मनन चिंतन, उसके बाद विचार सागर मंथन, उसके बाद अव्यक्त फरिश्ता, उसके बाद बीज रूप अवस्था, और पांचवे है विश्व कल्याणकारी स्थिति। ये पांच अवस्था में ग्रेजुअली जैसे एक एक स्टेप चढ़ते हैं ना, उस प्रकार से योग की इन अवस्थाओं में हमको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। अब सबसे पहला जो मनन चिंतन है, मनन चिंतन में क्या होता है कि हम इसी शरीर में होते हैं, साकार देह में ही होते हैं। हमने मुरली पढ़ी, आज की मुरली सुनी, ज्ञान के कोई पॉइंट सुना या कोई क्लास सुना, तो उस पर हमारा विचार चलता है, एकदम जैसे कुछ हमने उस पर थोड़ा मनन चिंतन किया। प्रारंभिक स्तर का मनन चिंतन किया कोई भी, तो उसका जो साधन है वो यही है कि हमारा ज्ञान, कोई क्लास सुना, किसी से कुछ बात सुनी, उस पर हमारा मनन चला, तो वो उसका साधन है। उसकी प्राप्ति क्या होती है कि हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं, हमारी बुद्धि जो है वो समर्थ दिशा में आगे बढ़ने लगती है, व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। जैसे गाय के बारे में कहते हैं ना, वो गाय घास खाने के बाद क्या करती है, उगाड़ती है, उगाड़ने से वो जल्दी पच जाता है उसका। ऐसे ही हम जो ज्ञान रूपी भोजन आत्मा को दिया है तो मनन चिंतन से वो पचने में इजी हो जाता है। ये जो है हम, इसका समय क्या है मनन चिंतन का, जैसे सवेरे मुरली सुनी उसके बाद मनन चिंतन कर रहे हैं, कोई क्लास सुना उसके बाद मनन चिंतन कर रहे हैं, या किसी को कोई कोर्स करवा रहे हैं तो मनन चिंतन चल रहा है हमारा, तो उस प्रकार से ये मनन चिंतन चलता है। और इसके लिए सोमान याद रखना है, मनन चिंतन के लिए सोमान, मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूं, ये इसका सोमान है। और जो हम थोड़ा मनन चिंतन चालू करते हैं वो हमारे चालू खाते में जमा होता है। आज दिन में देखा ना खाता बैंक का, तो वो चालू खाते में जमा होता है। उसके बाद दूसरा जो है रूरियान अवस्था, विशेष जो रूरियान अवस्था है वो उसमें बात करनी होती है। रूरियान, रू से आपस में बात करनी होती है, तो रू से मतलब या तो हम अपने आप से बात करें या बाबा, वो भी आत्मा है, परमात्मा है, तो हम उसके साथ बात करें, तो उसको रू रियान कहेंगे। हम आपस में बात कर रहे हैं या तो अपने आप से ही बात कर रहे हैं कि आज के दिन में इतना तो मुझे परिवर्तन करना है, या बाबा आप मुझे ये गाइड करना, आप मेरे साथ रहना, आज मैं विशेष इस कार्य के लिए जा रहा हूं, ये आपकी सेवा के लिए विशेष जा रहा हूं, तो आप ऐसे साथ बाबा के साथ बैठ के जैसे हम मन ही मन में उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो मन ही मन में या तो अपने साथ बातचीत करना या बाबा के साथ बातचीत करना या अन्य किसी आत्माओं के साथ आत्मिक स्तर पर बातचीत करना, मुंह से नहीं, मुंह से बोलना नहीं है इसमें कुछ भी, आत्मिक स्तर पर ही बातचीत कर रहे हैं किसी आत्मा को कि बस आप आ जाइए, आज आज जरूर आपका सारे संदेह दूर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे जैसे हम किसी को मानसिक रूप से शक्तियां भेज रहे हैं, तो ये रूरियान हुआ। वो भी हमको इसी साकार मनुष्य लोक में ही इस शरीर में रहते हुए ही करना है। रूरियान में हम शरीर से अलग नहीं होते हैं, हम शरीर में रहते हुए ही रूरियान करते हैं। इसकी प्राप्ति क्या है, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना, मतलब ये इसका साधन है कि हम बाबा से सर्व संबंध इसमें अनुभव कर सकते हैं। जिस संबंध की हमको खींच होती है, जिसको हमको ये होता है कि भाई ये संबंध मुझे अभी खींच रहा है या याद आ रही है, तो बाबा से उस संबंध को याद करना। तो ये है बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए रूढ़िहान करना। और वास्तव में देखा जाए तो सर्व संबंधी एक ही बाबा है हमारा। लौकिक में तो हर संबंधी अलग अलग होते हैं, लेकिन यहां एक बाबा में सर्व संबंध आ जाते हैं, तो वो सर्व संबंधों के रूप में बाबा को याद करना। और इससे प्राप्ति क्या होती है, जैसे आपको याद आया कि भाई कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर तो हमारा खास फ्रेंड है, या भारत का प्राइम मिनिस्टर तो जो है ना वो तो मेरे खास जो मेरा फ्रेंड है ना उसका भाई है, ऐसा कुछ भी चीज याद आई तो क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जब हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, ये इसकी डायरेक्ट प्राप्ति होती है। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, वो अपने माँ बाप के सामने जाते ही कैसा निश्चिंत हो जाता है, या माँ बाप को याद करते ही कि हाँ कुछ भी होगा ना मेरे पापा वो संभाल लेंगे, ऐसा होता है ना मन में कि भाई कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मेरे पापा संभाल लेंगे, वो बहुत उनकी पहचान है। तो ऐसे ही जब हमको बाबा के साथ का अनुभव होता है ना रूढ़िहान में, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं बहुत। और इसका समय कौन सा है रूढ़िहान करने का, हम साकार में कोई भी कर्म कर रहे होते हैं, चाहे घर पे खाना बना रहे होते हैं, चाहे ऑफिस में जा रहे होते हैं, ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, किसी से मिल रहे होते हैं, कुछ भी हम साकार में कर्म कर रहे होते हैं, उस समय हम ये रूढ़िहान अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। और इसके लिए स्वमान है, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं, ये स्वमान हम याद रखें रूढ़िहान अवस्था के समय। और रूढ़िहान अवस्था करें में हम रहेंगे तो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में, बचत खाते में जमा हो गया, ये जो जितना भी समय हम रूढ़िहान अवस्था में रहेंगे हमारा बचत खाता जमा होगा। तीसरी अवस्था है अव्यक्त फरिश्ता अवस्था। अव्यक्त फरिश्ता किसको कहते हैं आप जानते ही हैं, इस शरीर से न्यारी प्रकाश के शरीर में अपने आप को अनुभव करना, वो अव्यक्त फरिश्ता, इस शरीर से अलग प्रकाश के स्वरूप में अपने आप को अनुभव करना। और इसका अनुभव करने का स्थान है सूक्ष्म वतन। वो दोनों अवस्थाएं मनन चिंतन जो विचार सागर मंथन अवस्था है वो साकार मनुष्य लोक की, रूढ़िहान अवस्था भी साकार मनुष्य लोक की, ये अवस्था अव्यक्त फरिश्ता वो वतन में सूक्ष्म वतन में इसका हम अनुभव करेंगे। और इसका साधन यही, हम प्रकाश के शरीर में अपने आप को अनुभव करेंगे, अपने आप को बैठे बैठे जैसे इस शरीर से अलग कर लिया और लाइट का शरीर आकाश में जा रहा है सूक्ष्म वतन की ओर, और मैं सूक्ष्म वतन में पहुंच गया हूं, वहां अपने आप को अनुभव करें। अभी उसमें उसका साधन क्या है करने का, अपने आप को या तो ब्रह्मा बाबा जो दिव्य रूप से प्रकाशित है उसके सामने अनुभव करें, या शिव बाबा भी सूक्ष्म वतन में आए और मुझ आत्मा को, मुझ फरिश्ते को लाइट से और दिव्य बना रहे हैं। हमारे फरिश्ते की लाइट में कहीं भी थोड़ा बहुत कालापन है तो वो दूर हो रहा है और प्योर सफेद चमकती हुई लाइट बनती जा रही है। आगे चल के इसी फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार सबको होने वाला है, और सेंटर पर लाइनें लगने वाली है जब फरिश्तेपन का साक्षात्कार होगा। इसीलिए दुनिया में भी क्या कहते हैं, विशेष क्रिश्चियंस भाई बहन है, एंजल को बहुत मानते हैं वो। और इसका विशेष अभ्यास का टाइम है नुमाशाम। नुमाशाम को हम फरिश्ते बन के उड़ रहे हैं सारे विश्व में और बाबा से रोशनी लेके विश्व को रोशनी दे रहे हैं, ये अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास के लिए योग में चलते फिरते हम फरिश्ते अनुभव करें अपने आप को। इसका स्वमान है मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूं। जब आप इस अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करें तो विशेष इस स्वमान का अभ्यास करें, मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूं। इसका शुरुआत का अभ्यास, जब हम शुरू शुरू में अभ्यास करते हैं तो ये हमारे बचत खाते में जाता है, लेकिन जब इसका हमारा परफेक्ट अभ्यास हो जाता है और हम बिल्कुल फरिश्ता अवस्था में टिक जाते हैं और फरिश्ता अवस्था में टिक के रोशनी, जैसे हम रोशनीमय होकर रोशनी फैलती है हमारे से, तो हमारा टाइम डिपॉजिट में जमा होता जाता है इसका। बहुत प्यारी अवस्था है और ये बार बार दिन भर में हर एक घंटे में कम से कम 5-10 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए इस अवस्था का अभ्यास हमको जरूर करना है, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो। जो विदेही, अशरीरी, फरिश्ता, जो बाबा वर्ड यूज करते हैं वो प्रायः इसी अवस्था के लिए होता है। तो इसका हमको काम करते हुए भी, जैसे हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो काम करते 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 एक 10 सेकंड के लिए हम अलग हो गए और 10 सेकंड के लिए हम वहां से गुम हो गए और जैसे बिल्डिंग के ऊपर चले गए, वहां से सबको शकास दे रहे हैं, ऐसा अनुभव है। शरीर से अलग करना, इससे क्या होगा, अंतिम विनाश के समय हम बहुत सहज रीति से रह सकेंगे और शरीर भी छूटेगा तो बड़ी आसानी से, खुशी से शरीर छूटेगा, नहीं तो बहुत कष्ट होगा। वो लास्ट पेपर जो है ना नष्टो मोहा का, उसमें बहुत कष्ट होगा, लेकिन अगर ये अभ्यास किया हुआ है हमने तो हम बहुत सहज रीति से हंसते खेलते हुए शरीर छोड़ देंगे और हमारे सामने जो आएगा वो भी फरिश्ते स्वरूप में टिक जाएगा। अभी चौथी अवस्था है बीज रूप की अवस्था। बीज रूप माना मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, ये बीज रूप। इसका अभ्यास हमें कहां करना है, मूल वतन परम धाम, हमारे अपने घर में इसका अभ्यास करना है। इसके लिए क्या साधन है, बिंदी बन बिंदी बाप के किरणों के नीचे बैठ जाना। बिंदी बाप शिव बाबा से किरणें निकल रही हैं और मैं वो किरणें अब मेरे में समाती जा रही है, ये इसका साधन है, अभ्यास करने का साधन। वो किरणें मेरे में समाती जा रही है, बिंदु बाप से निकली हुई किरणें बिंदु बन के सकास ले रही हैं, वो मेरे में समाते जा रहे हैं। और इसके अभ्यास के लिए बस ये एक बिंदु रूप का अभ्यास करना, मैं बिंदु आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आकाश में रात को सितारा चमकता है उस प्रकार से मैं आत्मा चमक रही हूं। अपने आप को पॉइंट में ही अनुभव करना, जितना जितना हम पॉइंट रूप में अनुभव करते जाएंगे उतना हमारी बीज रूप अवस्था सहज बनती जाएगी। अभी इतनी सहज नहीं है बीज रूप अवस्था में टिकने का। इसका लाभ यह है, कहते हैं कि अगर हमने 4 मिनट भी बीज रूप अवस्था का अभ्यास कर लिया ठीक से, चार मिनट भी बीज रूप अवस्था का अभ्यास किया तो चार घंटे योग करने में जितनी हमको खुशी और आराम का अनुभव होता है उतना वो चार मिनट में हो जाएगा अगर हम वास्तव में बीज रूप अवस्था में टिक गए तो। प्रयास करते रहने में नहीं, प्रयास तो चालू रखना पड़ेगा, लेकिन उस अवस्था में हम टिक गए कि हाँ बिंदु बाप के नीचे मैं आत्मा सकास ले रही हूं, तो चार मिनट में चार घंटे का रिलैक्स अनुभव करेंगे हम। एक मिनट की बीज रूप अवस्था के लिए कहते हैं कि एक जन्म का एक संस्कार उसमें भस्म हो जाता है, इतनी पावरफुल अवस्था है ये। अगर हम यथार्थ रूप में टिकते हैं तो हमारे एक जन्म का एक संस्कार उसमें भस्म हो जाता है। योग अग्नि है ना, तो योग अग्नि में हमको पुराने संस्कार भस्म करने हैं, तो ये संस्कार हमारे भस्म हो जाते हैं। इतनी बीज रूप जो है वो पावरफुल अवस्था है, बीज रूप जिसमें पूरा जाड़ समाया हुआ होता है, बीज इतना पावरफुल होता है कि उसमें पूरा ही पेड़ पूरा जाड़ समाया हुआ होता है। इसलिए क्या कहते हैं कि एक एप्पल में कितने बीज होते हैं वो तो हम गिनती कर सकते हैं कि एक एप्पल में कितने बीज निकले, लेकिन एक बीज में कितने एप्पल होते हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक बीज में से कितने एप्पल निकलने वाले हैं। ये इतनी पावरफुल अवस्था है, तो इस पावरफुल अवस्था का अभ्यास हमको समय प्रति समय करते रहना चाहिए, विशेष गहन योग के समय जब हम भट्टियों में होते हैं तब, अमृत वेला के समय इस अवस्था का विशेष अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके फरिश्ते रूप का अभ्यास अच्छा हो गया है तो नुमा श्याम के समय भी थोड़े समय बीज रूप अवस्था का अभ्यास कर सकते हैं। इसका स्वमान है मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, ये इसका स्वमान है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। और इसके अभ्यास से हमारा टाइम डिपॉजिट अकाउंट उसमें जमा होता जाता है। इसका जब हम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं तो हमारे टाइम डिपॉजिट में जमा होता जाता है, लेकिन इसी में थोड़ा सा और एडिशन हो जाता है तो हमारी फिक्स डिपॉजिट हो जाती है, और वो एडिशन है नेक्स्ट अवस्था योग की, विश्व कल्याणकारी अवस्था। विश्व कल्याणकारी स्थिति में वो भी हम मूल वतन में परमधाम में ही उसका अभ्यास करते हैं, उसमें भी हम बिंदु रूप में ही होते हैं कि हम जिन बाबा की किरणों के नीचे हम आत्मा ज्योति बिंदु रूप में विराजमान है। उसमें एक और एडिशन होता है कि हमारे में से भी किरणें निकलकर दुनिया में फैलती जा रही है। वो ज्योतिबिंदु अवस्था में तो वो बाबा की किरणें हमारे में ही समाती जा रही है और हम प्योर बनते जा रहे हैं, लेकिन इस विश्व कल्याणकारी अवस्था में वो किरणें जैसे हमारे पर पड़ रही है, जैसे आईना होता है ना, आईने पर किरणें पड़ती है और फिर सामने रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे इसमें भी किरणें बाबा की किरणें हमारे पर पड़ रही है, हम प्योर बन गए हैं आईने की तरह और वो किरणें हमारे से निकलकर सारे विश्व में फैलती जा रही है। जिस आत्मा को जिस चीज की जरूरत होगी उन किरणों से मिल जाएगी, अलग अलग आत्मा को अलग अलग किरणें देने की जरूरत नहीं है। जैसे पावर हाउस से जो बिजली का कनेक्शन आया है वो फ्रिज के लिए अलग कनेक्शन आया है, माइक के लिए अलग कनेक्शन आया है, हीटर के लिए अलग कनेक्शन आया है, गीजर के लिए अलग कनेक्शन आया है, टीवी के लिए अलग कनेक्शन आया है ऐसा नहीं है, लेकिन पावर हाउस से तो एक ही कनेक्शन आया है। उस एक ही कनेक्शन से हम इलेक्ट्रिक के कितने साधन उपयोग में लाते हैं, गर्म करने के लिए भी, ठंडा करने के लिए भी, आवाज में आने के लिए भी, आवाज से दूर होने के लिए भी, रोशनी के लिए भी। तो हर प्रकार से हम एक ही बिजली का अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम इस मास्टर ये विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होते हैं, तो जो बाबा से किरणें हमें मिलती है, वो किरणें जब हमारे से रिफ्लेक्ट होकर दुनिया तक जाती है, तो जिस आत्मा को जो चीज चाहिए उसे वो प्राप्त हो जाती है, उसमें उसको मदद मिल जाती है। किसी को बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, उसको उसकी टचिंग मिल जाएगी। किसी को फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, उसको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी स्टूडेंट को एग्जाम देने जाना है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, उसको उसमें मदद मिल जाएगी। किसी को कोई बीमारी है, उसमें उसको सकास मिल जाएगी। माना हमारी बाबा से प्राप्त हुई किरणें जो हम भेज रहे हैं, सकास दे रहे हैं, उस एक में ही सभी प्राप्तियां हो जाती है। हमको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये बहुत पावरफुल अवस्था, विश्व कल्याणकारी अवस्था, इससे क्या हो जाता है, इससे मेन प्राप्ति, हम सिद्धि स्वरूप हो जाते हैं, हमारे संकल्प सिद्धि हो जाती है। बीज रूप अवस्था में हम, जैसे उसको कहते हैं ना, निर्विकल्प समाधि की अवस्था हो जाती है बीज रूप अवस्था में। लेकिन इसमें जो विश्व कल्याणकारी अवस्था है, इसमें हमारा संकल्प सिद्धि हो जाती है। माना हम किसी को कुछ भी अच्छा संकल्प देंगे तो वो उसके जीवन में पूरा हो जाएगा। जो भी हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे वो हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा, ऐसी अवस्था इसमें आ जाती है, अगर हम अधिक समय के लिए इस अवस्था में रह के अभ्यास करते हैं तो। तो इतनी पॉजिटिव और ये पावरफुल अवस्था है। इस अवस्था का अभ्यास हम कब कर सकते हैं, जब हम निरंतर गहन योग का अभ्यास कर रहे हो, जब एक डीप मेडिटेशन में हम जा रहे हो, चाहे वो अमृत वेला है, चाहे नुमाशा में, चाहे दिन में कभी भी, जब हम विशेष योग के लिए बैठे हुए हो और उसका अभ्यास कर रहे हो, उसके दौरान हम इस अवस्था का अभ्यास कर सकते हैं और सहज रीति से वो अभ्यास हो सकता है। इस अवस्था का स्वमान है, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं। इस स्वमान का हम अभ्यास करें, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं, मैं आत्मा उद्धार मूर्त हूं। इस प्रकार के जो स्वमान है उनके हम अभ्यास कर सकते हैं इस अवस्था के दौरान। और इस अवस्था का जो अभ्यास हम करते हैं वह हमारे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा होता है। तो सवेरे क्या बताया, फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न कितने जन्मों तक मिलता है, 84 जन्म, पूरे कल्प तक उसका रिटर्न मिलता है। तो अगर हम इस विश्व कल्याणकारी स्थिति का अभ्यास करते हैं योग में, तो यह हमारी फिक्स डिपॉजिट बन जाती है, जो 84 जन्म तक हम इसका रिजल्ट मिलता रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि योग की ये पांच अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को हम स्टेप बाय स्टेप अभ्यास करते जाएंगे तो बीज रूप में स्थित होना और विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होना, वहां तक हम आराम से पहुंच सकेंगे, अभ्यास हो सकेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप विधि पूर्वक उनका अनुभव करते जाइए तो हम योग में सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। फिर भोजन के बाद 8:30 बजे हम मिलेंगे। अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और हम यही पूरा करेंगे।
स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण प्राणों के प्यारे बाबा हमारे प्राणों के प्यारे बाबा हमारे तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार।